हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 14 टेक्स्ट नंबर 27। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए कृपा की आवश्यकता है, तो कृपा को प्राप्त करने के लिए पूरे भाव प्रेम और श्रद्धा के साथ मंगलाचरण करेंगे ताकि इस ज्ञान का पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद गीता मात की जय। चैप्टर 14 टेक्स्ट नंबर 27। भगवान श्री कृष्ण ने कल 26 में हमें बताया, माम च यो व्यभिचारिण भक्ति योगेन सेवते, यानी जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहता है, सगुणान समतीत येतान, यानी कि वो समस्त गुणों से अतीत हो जाता है और ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय इस प्रकार क्या होता है, वो ब्रह्म के स्तर तक पहुंचता है। और श्री प्रभुपाद ने हमें बताया कि इसका अर्थ क्या है, अगर हम लोग एकदम लास्ट थर्ड लास्ट लाइन से देखे ना, इसका अर्थ ये है कि गुणात्मिक रूप से मनुष्य को ब्रह्म में एकाकार हो जाना चाहिए, यानी कि क्वालिटीज जो हैं वो उनके अंदर एकाकार हो जाती है। ऐसी क्वालिटीज हमें भी अपने अंदर डालनी चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने के, यानी कि वो स्थिति जब प्राप्त हो जाती है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, यानी ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो भी मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं है, यानी कि उनकी उसकी इंडिविजुअलिटी, उसकी इन्फरादियत, उसकी व्यष्टि चेतना, जो व्यष्टि आत्मा है ना, उसकी अलग से है जो, वो वो उस रूप को कभी भी अपने उस शाश्वत रूप को, अपने उस इटर्नल आइडेंटिटी को नहीं खोता है। अब ब्रह्म की बात आई है, तो इस जो आज का जो श्लोक है 27, उसमें भगवान श्री कृष्ण हमें बहुत ही निराकार ब्रह्म के आश्रय के बारे में बता रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन जो मायावादी निराकारवादी है ना, अगर इस श्लोक को भी समझ लेना तो फिर उनको निराकार जो है वो साकार में बदल जाएगा, क्योंकि इसमें भगवान ने तो इतने अच्छे तरीके से एकदम क्लियरली बताया। क्या कहा भगवान ने, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। ब्राह्मणों मतलब ब्रह्म, जो निराकार ब्रह्म होता है, ब्रह्म ज्योति। ब्राह्मणों ही निश्चय, ही का मतलब होता है निश्चय, उसमें कोई संदेह नहीं है। प्रतिष्ठा मतलब आश्रय, अहम मतलब मैं। भगवान कहते हैं ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य च। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि जो मैं हूँ, भगवान कहते हैं अहम प्रतिष्ठा मतलब आश्रय हूँ ब्रह्म का, निराकार ब्रह्म। इसका मतलब यह है कि जो निराकार ब्रह्म है, जो ब्रह्म ज्योति है, वो किधर से आई है। भगवान साफ साफ कहते हैं वो उसका आश्रय मैं हूँ, वो मेरा आश्रय नहीं है। ऐसे नहीं लिखा हुआ अहम प्रतिष्ठा फ्रॉम द ब्रह्म, ऐसा नहीं लिखा हुआ है अहम ही ब्रह्म प्रतिष्ठा, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, कि निराकार ब्रह्म को किसने बनाया, मेरे से आया है, मैं उसका आश्रय हूँ, मैं उसका स्रोत हूँ। और आगे बताया भगवान ने अमृतस अव्ययस्य च, अमृतस मतलब अमर्त्य, अव्यय मतलब अविनाशी, च इसका मतलब ये हुआ जो अमर है और अविनाशी है, और जो ब्रह्म अमर्त्य और अविनाशी है उसका प्रतिष्ठा, उसका आश्रय कौन है। भगवान कहते अहम। जब भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान जंग में खड़े हैं रथ के पर और बोल रहे हैं कि जो ब्रह्म है, जो अमर्त्य है, जो अविनाशी है, उसको प्रतिष्ठित करने वाला मैं हूँ। शाश्वतस्य यानी कि वो शाश्वत है, वो इटर्नल है, जो धर्मस्य, और यहाँ पर बताया गया कि स्वाभाविक स्थिति स्वरूप वो शाश्वत है, वो रियल है, स्वाभाविक है, और सुखस्य यानी कि सुख का, एकांतिकस्य, एकांतिकस्य मतलब चरम अंतिम एकदम एंड लक्ष्य, और च यानी भी, यानी भगवान कह रहे हैं ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। अमृतस्य अव्ययस्य च, जो अमृत्य अविनाशी, शाश्वतस्य च धर्मस्य, शाश्वत है और सुख का स्वाभाविक पद है, और सुखस्य एकांतिकस्य च, सुख का स्वाभाविक पद है, यानी कि वहां पर ही सुख पॉसिबल है। अब इस चीज को श्रील प्रभुपाद जी हमें इतना अच्छे तरीके से बताएंगे कि हमारी सारी जो क्यूरीज हैं वो सब खत्म हो जाएंगी निराकार ब्रह्म के विषय में। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। ब्रह्म का स्वरूप अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख है। यानी कि ब्रह्म का क्या, उसका क्या स्वरूप है, अमरता है, अविनाशी, वो कभी समाप्त नहीं होता, शाश्वतता इटर्नल है, शाश्वत है, और सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है, श्री रूपा जी बोलते, लेकिन वो एंड नहीं है, वो तो स्टार्ट है। जैसे भगवान ने क्या कहा पहले वाले श्लोक में 26 में, व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, बस वो मेरी भक्ति करेगा और अव्यभिचारिणी भक्ति करेगा तो गुणों से बिल्कुल दूर हो जाएगा और ऐसा ऐसा उसे ब्रह्म का आस्वादन शुरू हो जाए। और वो तो स्टार्ट है, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जब इस एक पद पर आप स्टार्ट हो जाते हो तो उस पद का गोल जो है वो आगे आपको नजर आता है। ये तो उसके रास्ते पर चलने की पहली सीढ़ी है, यानी कि पहला स्टेप है जिसमें आपको ब्रह्म का अनुभूति होती है। तो श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है, परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है, यानी कि जब आप इस रास्ते पर चलोगे 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 तो आगे सेंटर में क्या आएगा, परमात्मा बोध आएगा कि वो जो ब्रह्म जिसके अंदर इतनी शाश्वतता है, अमरता है, जो अविनाशी है, वो वाकई में कुछ है, वो हृदय में रहता है, वो परमात्मा है। तो ये द्वितीय उसका स्टेप है, सेकंड स्टेप है। और आगे श्री प्रभुपाद जी साफ साफ बता रहे हैं, और भगवान परम सत्य का चरम साक्षात्कार है, और भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचना उसकी आखिरी मंजिल। चरम साक्षात्कार मतलब उसका रियल गोल, उसका असली मकसद, चरम लक्ष्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचना। अतः परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर ही रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, यानी कि इसका मतलब ये है कि अब देखो ब्रह्म तो मेरा एक्सटेंशन है, यानी कि मेरा ही मुझसे आया है, मेरे आश्रय में है, मैं रियल हूँ, मुझ पर पहुंचना बहुत ज्यादा, यहाँ तक नहीं पहुंचते, यहाँ तक ही रह जाते हैं, ब्रह्म पर ही रह जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, यानी कि ब्रह्म के सहारे चलते चलते तुम्हें कहाँ पहुंचना है, मुझ तक पहुंचना है। ये कितना सुंदर भगवान ने कहा है, और आगे श्री प्रभुपाद ने तो इतना इसको क्लियर भी कर लिया। अतः परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के भीतर रहते हैं, भगवान के अंदर ही हैं। यदि आप भगवान को प्राप्त कर लो तो समझो सब कुछ प्राप्त हो गया। सातवें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा प्रकृति की अभिव्यक्ति है। ये बहुत सुंदर और इम्पोर्टेंट श्लोक है, श्री प्रभुपाद जी हम बार बार कोट करते हैं। कौन सा श्लोक है बताओ, सातवें अध्याय का टेक्स्ट नंबर 4। भगवान ने क्या कहा, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम्य भिन्ना प्रकृति रष्टरा, और इसी को बोला अपरेयम इतस्वन्यम। भाष्य में बोला ये सब अपरा शक्ति है, यानी कि 7.4 में हमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अपरा शक्ति की बारे में बताया, परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। और भगवान इन अपरा प्रकृति में परा प्रकृति का को गर्भस्थ करता है। ये भगवान ने कब बताया था, इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 14 में, टेक्स्ट नंबर 3 में भगवान ने कहा था, मम योनिर् महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं धराम्यहम्, कि ब्रह्म नामक ये जो समग्र सृष्टि है, जो भौतिक वस्तु यानी जो अपरा प्रकृति है, उसमें क्या करता हूँ, उसमें मैं गर्भ स्थित कर देता हूँ, और इसी ब्रह्म को गर्भस्थ कर देता हूँ। और ये भगवान आज हमें श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्योंकि ये अपरा प्रकृति के अंदर भगवान इस अपरा प्रकृति के में परा प्रकृति को गर्भस्थ कर देते हैं, और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जब भगवान उसकी ओर दृष्टिपात करते हैं, अब भगवान तो आध्यात्मिक है, तो ये है भौतिक प्रकृति, और उसको आध्यात्मिक स्पर्श प्राप्त होता है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है, अब क्योंकि जीव इसी प्रकृति के अंदर है, और इसी प्रकृति के द्वारा यानी इसी शरीर के अंदर रहकर आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना स्टार्ट करता है, तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है। अब क्योंकि उसने अपने असलियत को जान लिया है कि मैं आध्यात्मिक तत्व हूँ, आध्यात्मिक स्पर्श से उत्पन्न हुआ हूँ, तो फिर जब उसको ये पता लगता है तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगता है, और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठता है, और पहले निराकार ब्रह्म, फिर परमात्मा और भगवान के बोध तक ऊपर उठता है। ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। श्री प्रभुपाद जी इस बात को बार बार क्लियर करते हैं कि ब्रह्म बोध जो है, निराकार ब्रह्म जो है, आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था यानी पहला स्टेप है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता, यानी कि वो क्या करता है, भौतिक तत्व पद को तो प्राप्त कर पार कर देता है, यानी कि उसको ये तो पता चल जाता है कि मैं जो हूँ वो ये शरीर नहीं हूँ, भौतिक ये भौतिक चीजें नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, तो उस ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक स्थिति को तो पार कर जाता है, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात में पूर्णतया प्राप्त नहीं करता, यानी कि उसको सही तरह से पता नहीं चलता है कि ये ब्रह्म आखिर आया किधर से है। तो भगवान बताते हैं यहाँ पर, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ये मेरे अंदर से आया है। यदि अभी आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। अगर उसके अंदर इच्छा उत्पन्न हो कि ये ब्रह्म आखिर किधर से आया है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने स्टेप बढ़ा सकता है और पहले परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान, जो कहते हैं ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, उस मैं हूँ तो मैं जो भगवान कह रहे हैं, उस भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे हुए, यानी कि ऐसा नहीं है श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि कृष्ण ही सब कुछ है, वेदों में कहीं नहीं लिखा हुआ, साफ साफ वेदों में बहुत सारे उदाहरण लिखे हुए हैं। सबसे पहला और प्रचंड प्रमाण है चार कुमारों का, जो पहले चार कुमार जो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए थे, चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, वो निराकार ही थे, मतलब उसको उनको खबर ही नहीं थी कि भगवान कौन है, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक ऊपर उठे और आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने एक बार भगवान के चरणों में रखे हुए तुलसी दल का आस्वादन किया, तब उनको ऐसा लगा कि वह ब्रह्म निराकार ब्रह्म कितना मतलब उसमें इतना स्वाद नहीं है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वे भक्ति पद तक ऊपर उठे। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता, यानी कि अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निराकार ब्रह्म तक ही चिमटे रहते हैं, वो ऊपर नहीं उठना चाहते, उसके नीचे गिरने का डर लगा रहता है, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं ना। अब वो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, निराकार ब्रह्म यानी कि उसका कोई आकार नहीं होता, उसके हाथ पैर नहीं होते, उसका कोई स्वरूप नहीं होता, तो उसको क्या वो टेस्ट नहीं मिलता, वो प्रेम नहीं मिलता, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं उसके नीचे गिरने के चांसेस बने रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष भगवान के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं होती है। श्री प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि वहां तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, कृष्ण तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि बुद्धि को विमल करना है, यदि पवित्र करना है, तो आपको भगवान यानी परम पुरुष भगवान के विषय में सूचना प्राप्त करनी होगी। इसका अर्थ है कि हमें भगवान के विषय में जानना पड़ेगा। अतः ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। श्री प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं उन लोगों को कि यदि आप ब्रह्म पद तक ऊपर उठ गए हो लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो, तो फिर बहुत सारा भय बना रहता है, चांसेस बने रहते हैं कि आप वापस से नीचे गिर जाओ। वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है रसौ वयसः, यानी कि श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं रसौ वयसः, इसका मतलब होता है रस के सागर भगवान श्री कृष्ण वो है। रसम ही वायम, यानी श्री कृष्ण को जान लेने पर जब उसको समझ लेते हैं तो क्या होता है, लब्धानंदी भवती, लब्धानंदी मतलब फिर क्या होता है जब रस के सागर, देखो मनुष्य भगवान का अंश, ये जीव जो है वो भगवान का अंश है। अब भगवान क्या है, रस के सागर हैं, और अगर अब हम भगवान के अंश हैं तो हम भी रस चाहते हैं, हमें भी रस की आशा है, हम भी अब अगर हम निराकार में रस नहीं है, नीरस है, तो वहां पर रहकर शांति प्राप्त नहीं होती है, नीचे गिरने का चांसेस बने रहते हैं। लेकिन यहाँ रसौ वैसा यानी रस के सागर भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर लब्ध्वानंदी भवती, फिर वो मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंद को प्राप्त करता है। मुक्ति का मतलब है आप अपने वास्तविक आनंद को प्राप्त करो, और वो तभी संभव है जब हम रसौ वयसः, रसम ये वायम लब्ध्वानंदी भवती, रस के सागर भगवान श्री कृष्ण को जान लेंगे तो ही हम दिव्य आनंद को प्राप्त करेंगे। आगे बता रहे हैं तैतृय उपनिषद 2.7.1, परमेश्वर छहों ऐश्वर्यों के पूर्ण और जब भक्त यानी कि सारे 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, कौन से ऐश्वर्य हैं बताते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यस्य एव षडनाम भग इति गणा, के परमेश्वर के अंदर सबसे ज्यादा मतलब पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सुंदरता, पूर्ण धन, पूर्ण शक्ति, पूर्ण वैराग्य, ये सब सबके सब पूर्ण रूप से हैं। तो ये सारे षडेश्वरी जिसके अंदर हैं, और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। अब उसको ये सारी चीजें अगर भगवान को नहीं मिलता, ब्रह्म ज्योति में ये सारी ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन भगवान के निकट जब पहुंचता है तो इन सारी ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। राजा का सेवक लगभग राजा ही के समान पद को भोगता है। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं, यानी कि भक्ति के साथ साथ आपका क्षय नहीं होता, आपकी अध्यात्म आपकी आत्मा का विनाश नहीं होता, आप उनके गौण, देखो पहले भी भगवान ने श्रील प्रभुपाद ने बताया था ना ऊपर, देखो लास्ट जो शुरू में हमने पढ़ा, इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म में एकाकार हो जाना चाहिए, उसके जो गुण हैं, उसके जो ऐश्वर्य हैं, वो तो उसे प्राप्त, लेकिन ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को नहीं खोता है, उसका अपना एक स्वरूप बना रहता है, और उस स्वरूप के जरिए से वो उस सुख का आदान प्रदान करता है, षडेश्वरीय का आदान प्रदान करता है। और जब हम भगवान के सेवक बन जाते हैं तो श्री प्रभुपाद जी कितना अच्छा बता रहे हैं कि राजा का सेवक लगभग राजा ही के समान पद का भोग करता है। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतएव भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं, कि भक्ति जब हम करते हैं उसमें सब कुछ अंदर ही होता है। क्यों अंदर होता है? क्योंकि भक्ति किसकी की जा रही है? भगवान, और भगवान और भगवान से रिलेटेड किसी चीज में कोई फर्क नहीं होता है। भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान के नाम, भगवान की महिमा सब इक्वल स्थिति पर होते हैं। तो जो भक्ति करता है तो उसके लिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि फिर वो शाश्वतता, अमरता सब सम्मिलित होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं कह दिया, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति ये पहले से ही प्राप्त करते कर रहे होते हैं, यानी कि करते रहते हैं, उनको पहले से ये सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, इसके कारण वह नीचे गिरता है। अब श्रील प्रभुपाद जी हमें वही बात बता रहे हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पर आके फंसे हुए हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वास्तव में तो जीव ब्रह्म होता है, लेकिन उसके अंदर एक कमी होती है, एक मिस्टेक होती है, क्या? कि वो भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रखता है। ये इच्छा भी इसलिए होती है क्योंकि वो भगवान का अंश होता है, भगवान के अंदर, भगवान क्योंकि प्रभु है तो उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा ये गुण होता है जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। लेकिन जीव को ये याद रखना चाहिए कि मैं प्रभु नहीं हूँ, मैं तो दास हूँ। और जब ये अपनी विस्मृति हो जाती है, उसको याद नहीं रहता है, तो क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है। स्वाभाविक स्थिति यानी कि जब वो इस प्रकृति में भद्र नहीं होता है, उसकी रियल स्थिति क्या है? वो जीवेरे स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास। उस स्थिति में क्या होता है? वो गुणों से परे होता है, गुणों से जितने भी प्रकृति के गुण हैं उसमें उसको उनसे कुछ लेना देना नहीं होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से। लेकिन जब जीव प्रकृति, जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मिन् गर्भम् ददामि, हम इस भौतिक प्रकृति के अंदर जब वो आ जाता है, वह अपने तीनों गुणों यानी सत्तो रजो तथा तमो गुण से बांध देता है। फिर क्योंकि तीनों गुण उस पर आक्रमण करते हैं, इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। और क्योंकि गुण इसके ऊपर पहले उसको याद रहता है कि मैं दास हूं, लेकिन जब वो प्रकृति में आ जाता है और इसके संसर्ग के कारण भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा हो जाती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत ही दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है वो दूर हो जाती है। लेकिन जब जैसे वो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में हो जाता है, यानी उसे अपने वास्तविक स्वरूप यानी कि मैं दास हूँ इसका बोध हो जाता है, तो प्रकृति को वश में करने की जो उसकी इच्छा थी वो दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी उपाय बताते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम उस दिव्य पद को प्राप्त। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों की संगति करके भक्ति की नौ विधियां। कौन सी नौ विधियां हैं? प्रहलाद महाराज बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अर्थात श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान को स्मरण करना और सखा भाव से, प्रेमी भाव से, वात्सल्य भाव से आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति तथा गुरु के प्रभाव से, यानी कि गुरु तो बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन भक्तों का संग और ये भक्ति की नौ विधियों से मनुष्य की प्रभुत्व जताने की जताने वाली जो इच्छा है वो समाप्त हो जाएगी और वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाएगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय में 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं 22 से लेकर अब तक क्या बताया भगवान ने, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते। के जो भी गुण आपके ऊपर हावी हो जाए आप किसी से भी डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। और कैसे रहना है, उदासीन वदासीनो गुणयो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नेङ्गते। गुणों के साथ बिल्कुल उदासीन रहना है, उसकी वजह से विचलित नहीं रहना है और अपनी जगह से अपने पद से हिलना नहीं है। सुख दुख समदुख सुख स्वस्थ सुख दुख और सुख में समान रहना है, अपने स्व में स्थित रहना है। समलोष्टाश्म कांचन हर चीज को समान समझना है। तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्थिति। अच्छा मिलता है बुरा मिलता है, निंदा मिलती है या आपकी स्तुति होती है, सबको तुल्य समझना है एक समान। मानापमान यो तुल्यो तुल्यो मित्रारी पक्ष। मान मिलता है अपमान मिलता है और दोस्त हो या दुश्मन हो सबके साथ सम रहना है। सर्वारंभ परित्यागी गुणतीतः स उच्यते। सारे जो भी आरंभ है उनको त्याग करना है, उद्यमों को त्याग करना है, इस तरह से गुणातीत हो जाएंगे। फिर क्या होगा, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। इस तरह से अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा जब भगवान को प्राप्त, भगवान की भक्ति करेंगे तो सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और गुणों से ऊपर उठेंगे, ब्रह्म तक पहुंचेंगे। आगे बताया भगवान ने कि ब्रह्म आपकी अंतिम लक्ष्य नहीं है, ब्रह्म तक पहुंचना अंतिम लक्ष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्याव्ययस्य च, कि जो अमृतस्य है, जो शाश्वत है, उस ब्रह्म का प्रतिष्ठा करने वाला, उसका आश्रय अहम भगवान ने कहा मैं हूँ। एटलीस्ट तुम्हें मुझ तक पहुँचना है और शाश्वतस्य से धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मुझ तक भगवान बोलते हैं जब आपको पहुँचोगे तब आपको दिव्य आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने बताया रसो वैसह रसम वे हे वायम लब्ध्वानंदी भवति। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण रस के सागर हैं और जब उसको जान लोगे तभी आप रस यानी आनंद को प्राप्त कर सकोगे। भगवान की भक्ति, अभी यहाँ पर भगवान की भक्ति कैसे की जाए, श्री प्रभुपाद जी उसको बहुत सुंदर और सरल तरीके से बताते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की भक्ति अतीव सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उचिष्ट खाए, यानी कि भगवान को जो अर्पण किया गया वही खाना है। भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे। अब देखो ये जो आपके ज्ञान इंद्रियां है ना, आंख कान नाक त्वचा रसना, इसको कंट्रोल करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जीवा को क्या खिलाओ, जो भगवान को अर्पित किया गया भोजन है उसको खिलाओ। चरण नाक को क्या दो, भगवान के चरण कमल पर चढ़े हुए पुष्पों की सुगंध और भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करने के लिए अपनी आंखों को प्रेरित करो। भगवान के विभिन्न कार्यकलापों पर उनके भक्तों के साथ साथ प्रेम विनय के बारे में पढ़े, यानी कि शास्त्र अध्ययन करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करें और भगवान तथा उनके भक्तों की आविर्भाव तथा तिरोभाव को मानने वाले दिनों में उपवास भी करें। यानी इससे क्या होगा, आपके अंदर पवित्रता आएगी। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य हो जाता है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ तक पहुँच जाओगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी तरक्की करके मुझ तक भी पहुँच जाओगे, तो यहाँ तक तो एटलीस्ट पहुँचना है। ये सब भगवान की भक्ति करनी चाहिए हमें। और इस तरह आज हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर श्री प्रभुपाद यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय यानी प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोध्याय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।